दिन भर तारीख 27 अक्टूबर दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के एक नेता की कथित सीडी के मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ के एक मंत्री की सेक्स सीडी थी, इससे सरकार पर मुझे लेके आई है।
सीडी प्रकरण पर राजनीति है गरम।
मैनिपुलेटेड करके दिखाया गया है, अगर किसी व्यक्ति के बारे में ये बात कोई कहे कि उस व्यक्ति की सीडी इस टाइप की है, तो 500 सीडी का निर्माण करने का प्रश्न क्या है।
विवेचना में 33 साल पहले उस बॉक्सिंग मुकाबले की कहानी जिसमें मोहम्मद अली ने विश्व चैंपियन जॉर्ज फोरमैन को नॉकआउट किया था। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। गाजियाबाद के सीजेएम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा की ट्रांजिट रिमांड दे दी है। अब पुलिस उन्हें छत्तीसगढ़ ले जाएगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने विनोद वर्मा को शुक्रवार तड़के उनके इंदिरापुरम स्थित घर से गिरफ्तार किया था। विनोद वर्मा ने कहा था कि उनके पास छत्तीसगढ़ के एक मंत्री की सेक्स सीडी है और यही कारण है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। कैटलोनिया की संसद ने स्पेन से स्वतंत्र होने के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। कैटलोनिया की आज़ादी के विरोध में कुछ सदस्यों ने संसद से वॉकआउट भी किया। इसके बाद गुप्त मतदान करवाया गया। स्पीकर कैरमी फॉरकैडल ने नतीजों का ऐलान करते हुए कहा, स्वतंत्रता के ऐलान पर लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में 70 प्रतिनिधियों ने मतदान किया, 10 ने इसके विरुद्ध वोट दिया और 2 ने कोई राय नहीं दी। इसके साथ ही कैटलोनिया को लेकर संकट गहरा गया है। दोनों पक्ष ऐसे कदम उठा रहे हैं जो एक दूसरे को उकसाने वाले हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय ने सीनेट से कहा है कि कैटलन प्रशासन को भंग कर दिया जाए। अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने कहा है कि उत्तर कोरिया से सैन्य तनाव को खत्म करने के लिए अभी भी वॉशिंगटन कूटनीतिक हल तलाश रहा है। दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए जनरल मैटिस ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया लगातार दुनिया को उकसा रहा है, मगर अमरीका किसी तरह का संघर्ष नहीं चाहता। जैसा कि अमेरिका के विदेश मंत्री टिलरसन साफ कर चुके हैं, अमेरिका का लक्ष्य युद्ध नहीं है। अमेरिका का मकसद कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु हथियारों को हटाना है। ये थे अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस के शब्द। केन्या में चुनाव अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोबारा हुए मतदान में अगस्त में हुए मतदान की तुलना में बहुत कम वोट पड़े। 2 महीने पहले जहां करीब 80% मतदान हुआ था, इस बार 30% ही वोटिंग हुई। आंकड़े बताते हैं कि केन्या के बहुत से लोगों पर विपक्ष के नेता राइला ओडिंगा की चुनाव बहिष्कार की अपील का असर हुआ है। नैरोबी की किबेरा झुग्गियों के चुनाव अधिकारी बीट्राइस मूली ने कहा,
सभी केंद्र खुले थे और वोटर वहां आकर वोट दे सकते थे, मगर हमने देखा कि बहुत से केंद्रों पर मतदान नहीं हुआ। केंद्र तो खुले थे मगर वोटर आए ही नहीं। ये थे नैरोबी की चुनाव अधिकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के जांचकर्ताओं का कहना है कि बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के इंटरव्यू से पता चलता है कि म्यांमार छोड़ने से पहले उन्हें सुनियोजित हत्या, यातना, बलात्कार और आगजनी का सामना करना पड़ा है। कई हफ्तों की जांच के बाद जिनेवा में बात करते हुए जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने रखाइन राज्य के विभिन्न गांव से आए लोगों से एक जैसी बातें सुनी। जांचकर्ताओं की टीम का नेतृत्व इंडोनेशिया के पूर्व अटॉर्नी जनरल मार्ज़की दारुसमन कर रहे थे, मगर उन्हें म्यांमार ने अपने यहां आने नहीं दिया था। रूस ने संयुक्त राष्ट्र की उस रिपोर्ट की आलोचना की है जिसमें कहा गया है कि इस साल खान शेखुन में हुए रासायनिक हमले के पीछे सीरिया की सरकार थी। संयुक्त राष्ट्र की जांच में पाया गया है कि नर्व एजेंट सरीन को हवाई जहाज से गिराया गया था। इस घटना में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, मगर रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि इस रिपोर्ट में कई अनियमितताएं हैं। ब्रिटेन के विदेश सचिव बोरिस जॉनसन ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो अपने सहयोगी सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के प्रशासन के कामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। गजा में हमास संगठन के सुरक्षा बलों के प्रमुख एक बम हमले में जख्मी हो गए हैं। तौफीक अबू नईम की कार उस वक्त बम से उड़ा दी गई जब वो नुसैरत रिफ्यूजी कैंप में थे। उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उनके जख्म जानलेवा नहीं हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि धमाकों के पीछे किसका हाथ है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारत की राजनीति में आज एक बार फिर से कथित सेक्स सीडी ने हंगामा मचा दिया है। मामला है छत्तीसगढ़ के एक मंत्री का, लेकिन इसकी गूंज सुनाई दी दिल्ली और गाजियाबाद में। छत्तीसगढ़ पुलिस ने राज्य के एक मंत्री से जुड़ी कथित सेक्स सीडी के मामले में गाजियाबाद से वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया। इसके बाद गाजियाबाद की सीजीएम कोर्ट ने विनोद वर्मा की ट्रांजिट रिमांड छत्तीसगढ़ पुलिस को दे दी। अब पुलिस उन्हें छत्तीसगढ़ ले जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने इस पूरे प्रकरण पर राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरा।
वरिष्ठ पत्रकार एडिटर्स गिल्ड के सदस्य को अगर इस तरीके से घर से अगर उठा लिया जाए, क्योंकि वो एक मिनिस्टर की जांच कर रहे हैं और गंभीर आरोपों की जांच कर रहे हैं, तो क्या हिम्मत दूसरे और लोग करेंगे, दूसरे छोटे जर्नलिस्ट करेंगे, इस चीज का सबसे बड़ा प्रश्न उठता है।
कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन। बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह आज सुबह से ही गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने और फिर गाजियाबाद कोर्ट में भी मौजूद थी। किस तरह से घटना चक्र घूमा, सुनिए उन्हीं से।
ये मंत्री की सीडी है जी, खुल जाएगी सब अभी, इधर टिप ऑफ आइसबर्ग है।
वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा के घर बीती रात 3 बजे इंदिरापुरम पुलिस के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची। उस वक्त विनोद वर्मा घर पर सो रहे थे। पुलिस सीधे उन्हें घर से गिरफ्तार कर दिल्ली से सटे वसुंधरा इलाके में इंदिरापुरम थाने ले आई। खबर मीडिया में आते ही पत्रकार भी वहां पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन रात 3 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ना तो इंदिरापुरम पुलिस का कोई बयान आया और ना ही छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से। 11 बजे के आसपास वहां जुटे पत्रकारों को सूचना मिली कि वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को गाजियाबाद के सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि इंदिरापुरम थाने से सीजीएम कोर्ट ले जाते हुए विनोद वर्मा ने बातचीत में कहा, मेरे पास छत्तीसगढ़ के एक मंत्री की सीडी थी और इसलिए सरकार परेशान है। इसके बाद पुलिस विनोद वर्मा को लेकर कोर्ट पहुंची। वहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। पत्रकार विनोद वर्मा के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, इनको पहले से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। जो सीडी मिली वो पुलिस खुद लेकर आई थी। इतना ही नहीं, रंगदारी यानी वसूली के लिए मेरे मुवक्किल ने कोई कॉल भी नहीं किया। छत्तीसगढ़ पुलिस के पास अपने तर्क थे। पुलिस ने दावा किया कि जब वो सीडी बनाने वाले के पास पहुंचे तो उसने बताया कि 25 अक्टूबर को सीडी बनवाने के लिए विनोद वर्मा उनके पास आए थे। पुलिस के मुताबिक विनोद वर्मा ने जस्ट डायल से सीडी बनवाने वाले का नंबर लिया था, सीडी की 1000 कॉपी बनवाने का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 500 सीडी उनके घर से बरामद हुई। जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पहले पुलिस से जब्त की गई सीडी दिखाने को कहा तो पुलिस ने इसके लिए थोड़ा वक्त मांगा। दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो सीजीएम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा की ट्रांजिट रिमांड पुलिस को दे दी।
छत्तीसगढ़ के एक मंत्री की सेक्स सीडी थी, इससे सरकार परेशान होकर मुझे लेके आई है।
कोर्ट में विनोद वर्मा की तरफ से जमानत याचिका की अर्जी दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें लेकर आज ही अपने राज्य रवाना हो जाएगी। विनोद वर्मा बीबीसी के पूर्व पत्रकार रहे हैं, वह अमर उजाला के डिजिटल एडिटर भी रह चुके हैं। विनोद वर्मा छत्तीसगढ़ के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लंबे समय से लिखते भी रहे हैं और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं। सरोज सिंह, बीबीसी, गाजियाबाद।
लेकिन ये सब तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ, लेकिन कहानी है छत्तीसगढ़ की। जिस कथित सीडी की बात हो रही है वो वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेता की है। इधर पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई और उधर छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई। कांग्रेस पार्टी को जहां सरकार घेरने का मुद्दा मिला, वहीं राज्य की बीजेपी सरकार के मंत्री सफाई की मुद्रा में सामने आए कि सीडी के नाम पर उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दिन भर की हलचल सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल से।
विनोद वर्मा को हिरासत में लिए जाने की खबर पॉप हटने के साथ ही राजधानी रायपुर में चर्चा में आ गई थी, लेकिन सरकार और पुलिस के अफसर कुछ भी कहने बताने से बचते रहे। स्थानीय चैनलों पर जब खबर आई तो रायपुर के आईजी पुलिस प्रदीप गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि रायपुर में प्रकाश बजाज नामक व्यक्ति ने गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे पुलिस में FIR दर्ज करवाई थी और इसके 11 घंटे के भीतर ही छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहुंचकर विनोद वर्मा को गिरफ्तार कर लिया।
FIR में जो सूचना दी गई उसमें उसने ये बताया कि उसको कई दिन से फोन आ रहे हैं कि इस तरह की कोई अश्लील सीडी उसके आका के बारे में वो उसके पास तैयार है और अगर वो उपकृत नहीं करेगा तो उसको वो मल्टीप्लाई करके वो कर देगा।
IG पुलिस प्रदीप गुप्ता के अनुसार पुलिस को कथित सीडी बनाने वाले का पता जस्ट डायल वेबसाइट से मिला और फिर पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि पत्रकार विनोद वर्मा ने ये सीडी बनवाई है।
जो विनोद वर्मा का कॉल जो नंबर आया वो हमको उस व्यक्ति के पास मिला जिसने सीडी का निर्माण किया है।
हालांकि प्रदीप गुप्ता यह नहीं बता पाए कि जिस व्यक्ति ने सीडी बनाई उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एफआईआर में पुलिस ने जिस आका की कथित अश्लील सीडी बनाए जाने का जिक्र किया है उस बारे में भी आईजी कुछ नहीं बता पाए। लेकिन आईजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण और परिवहन समेत कई विभागों के मंत्री राजेश मूणत भाजपा के दूसरे नेताओं के साथ सफाई देने सामने आए। मूणत ने खुद कहा कि सीडी के सहारे उनके चरित्र की हत्या की जा रही है।
जिस प्रकार का सीडी के अंदर मैनिपुलेटेड करके दिखाया गया है, अगर किसी व्यक्ति के बारे में ये बात कोई कहे कि उस व्यक्ति की सीडी इस टाइप की है तो 500 सीडी का निर्माण करने का प्रश्न क्या है, इसकी जांच कराकर इसकी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
लेकिन मंत्री की सफाई के उलट आम आदमी पार्टी ने मंत्री के निवास पर पहुंचकर भारी हंगामा मचाया और मंत्री के घर की नेम प्लेट पर कालीख पोत दी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी का विरोध किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार हिटलर शाही पर उतर आई है।
जिस सीडी के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे पास भी वो सीडी उपलब्ध है, किसी ने भेजा है मुझे सीडी, मेरे पास भी वो सीडी है और इसके आधार पर किसी गिरफ्तारी कर ले ये तो घोर निंदनीय है। अपने मंत्री को बचाने के लिए एक पत्रकार को गिरफ्तार करे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है।
फिलहाल मामला गर्म है और राजनीतिक गलियारे में कुछ और सीडी कुछ और टेप की चर्चा बनी हुई है। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी टेप और सीडी कुछ दिन चर्चा में बने रह सकते हैं। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
और अब आपको बताते हैं कि कल क्या है बीबीसी इंडिया बोल का विषय।
बीबीसी इंडिया बोल,
इतिहास को फिर से परिभाषित करने की कोशिश। सवाल उठाए जा रहे हैं टीपू सुल्तान से लेकर ताजमहल और मुगलों की विरासत तक। इतिहास पर राजनीति क्यों और क्या हैं इसके खतरे? बीबीसी इंडिया बोल में इस शनिवार 28 अक्टूबर को इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
झारखंड में 85 गांवों के लोगों ने कुल्हाड़ी के लिए गैस कनेक्शन कुर्बान कर दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के इन गांवों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाना था, लेकिन वन विभाग ने इसके लिए कुल्हाड़ी जमा करने की शर्त लगा दी ताकि जंगलों की कटाई रुक सके। आदिवासियों ने ये कहकर कुल्हाड़ी जमा कराने से इनकार कर दिया कि ये उनकी परंपरा का हिस्सा है। न किसी ने कुल्हाड़ी जमा कराई और न ही किसी को गैस कनेक्शन मिला। सुनिए डलमा से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
यहाँ नेटवर्क नहीं है, सिर्फ वर्किंग लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थित गांव का नाम ओप्पो है, पंचायत गोबरघुसी। यह दलमा वन्य अभयारण्य के कारण इको सेंसिटिव जोन के तहत पड़ने वाले 85 गांवों में से एक है। इसके अलावा 51 और गांव हैं जो आंशिक तौर पर इस खास जोन में आते हैं। घने जंगलों के बीच से गुजरती एक पतली सी सड़क पुल पुलियों से होते हुए हमें यहाँ पहुँचाती है। लोग बताते हैं कि इन्हीं रास्तों से हाथियों का झुंड आता जाता है, कभी कभार भालू और लकड़बग्घे जैसे जानवर भी। इस कारण अधिकतर लोगों ने अपने घरों में कुल्हाड़ी रखी है। अब इसी कुल्हाड़ी को लेकर इन गांवों के हजारों लोग एकजुट हो गए हैं। मेरी मुलाकात गोबरघुसी पंचायत के मुखिया खगेंद्र नाथ सिंह से होती है। वे बीबीसी से कहते हैं,
हम लोग का जो परंपरा नियम है, यहाँ का कोई पीढ़ियों का जो हम लोग का ये कुढ़ाल बोठीन कटारी जो रखते हैं, ये सिर्फ लकड़ी काटने के लिए हम लोग नहीं रखते हैं, बल्कि हम लोग का परंपरा यहाँ सांस्कृतिक का भी हम लोग का एक अलंकार है ये। और ये हम लोग का क्षति पहुँचाने वाला हथियार नहीं है कि हम लोग का लकड़ी काटना है। हम लोग तो चूल्हा नहीं लेंगे, बलन कुढ़ाल रखेंगे। चूल्हा से क्या होगा उसका चूल्हा से।
दरअसल यह विवाद मुख्य वन संरक्षक आनंद मोहन शर्मा के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी कुल्हाड़ी जमा कराने की बात कही थी। दलमावन अभयारण्य में 4 महीने पहले हुए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को जंगलों की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए और अपनी कुल्हाड़ी वन विभाग को दे देनी चाहिए। इसके बाद ग्रामीणों को मुफ्त गैस कनेक्शन, चूल्हा और 1 साल तक मुफ्त में गैस सिलेंडर दिलाने की कवायद की जाएगी। हालांकि आनंद मोहन शर्मा किसी भी तरह की शर्त लगाने से इनकार करते हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा कि मैंने लोगों से स्वेच्छा से ऐसा करने की अपील की थी, इसमें शर्त लगाने जैसी कोई बात नहीं है। सीसीएफ आनंद मोहन शर्मा यह नहीं बता पाते कि अगर ऐसी कोई शर्त नहीं है तो इन गाँवों के चयनित 400 लोगों को अभी तक गैस कनेक्शन क्यों नहीं मिल सका। वहीं ओप्पो की लक्ष्मी सिंह कहती हैं कि हमें गैस कनेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, हम आदिवासी लोग हैं और जंगलों से चुनकर लाई गई सूखी लकड़ियों के सहारे ही हमारा चूल्हा जलता है। लक्ष्मी सिंह ने बीबीसी से कहा,
गैस के चूल्हा में हो जाएगा जो शादी, मेरा मान लीजिए जो मेरा लड़की को शादी हो जाएंगी तो गैस में तो नहीं होगा ना, कुल्हाड़ी अनिवार्य दरकार है। कुल्हाड़ी तो आदि बिना मेरा है, लेकिन जो मेरा माँ जी डेथ हो गया तो ज़्यादा लकड़ी लगेगा तो कैसे होगा, तो कुल्हाड़ी तो जरूरी पड़ेगा, कुल्हाड़ी दावली बठिन जो सब्जी काटने के लिए।
बहरहाल यह विवाद तो आज न कल सुलझा लिया जाएगा, लेकिन दलमा वन्य अभयारण्य के कारण इको सेंसिटिव जोन में आने वाले इन गांवों के लोगों की कई और समस्याएं भी हैं जो यहां पहुंचे बगैर नहीं समझी जा सकती। इस इलाके में सदियों से रहने वाले पहाड़िया, सबर, बिरहोर जैसी आदिम जनजातियां अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। सरकार को चाहिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इन गांवों में भेजे और कम से कम एक बार चीजों को इनकी नजर से देखने की कोशिश करे। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए झारखंड के दलमा रेंज में।
वक्त है विवेचना का। 33 साल पहले 29 अक्टूबर 1974 को ज़ाइर की राजधानी किंशासा में विश्व हैवीवेट बॉक्सिंग का महानतम मुकाबला हुआ था, जिसमें मोहम्मद अली ने तत्कालीन विश्व चैंपियन जॉर्ज फोरमैन को नॉकआउट कर दूसरी बार विश्व खिताब जीता था। उस मुकाबले को रंबल इन द जंगल के नाम से जाना जाता है। रेहान फजल याद कर रहे हैं उस ऐतिहासिक मुकाबले को।
So the stage is set. We're just about ready to begin. Round one, the heavyweight championship of the world. Ali ready, Foreman ready. We're waiting for the opening bell.
29 अक्टूबर 1974, जैसे ही हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली ने ज़ाइर की राजधानी किंशासा के 20th of May स्टेडियम की रिंग में कदम रखा, 60,000 दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम ने एक स्वर में गर्जना की, अली अली बोमाये, अली अली बोमाये। मतलब था अली उसे जान से मार दो। समय था सुबह 3:45। जी हाँ, आपने सही सुना, सुबह 3:45। क्या थी इसकी वजह, हमने पूछा मोहम्मद अली के बॉक्सिंग करियर को नजदीक से देखने वाले नॉरिस प्रीतम से।
अब यूएस में बाउट नहीं कराई, लेकिन देखने वाले तो बहरहाल यूएस में ही थे, तो जो टाइमिंग थी वो सूट करती थी कि उस वक्त वहाँ पीक आवर्स हों। जैसे कि हम आमतौर पे अक्सर देखते हैं कि खाली स्टेडियम में 2-3 बजे भारत में क्रिकेट हो रहा है और हम सोचते हैं क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि वो ग्राउंड में देखने वालों के लिए नहीं होता, बल्कि टीवी स्क्रीन में, बेशक आप उसे इडियट बॉक्स कहें, लेकिन उस पे बैठ के देखने वालों के लिए होता, इसलिए वो 4 बजे बाउट रखी गई थी और लाखों लोगों ने देखा और अंदर स्टेडियम में उस हॉल में 60,000 लोग, जो आज भी एक बड़ी तादाद मानी जाती है। उस वक्त सोचिए कि 1974 में क्या रहा होगा वो, जबकि ना ट्विटर था, ना गूगल था, ना इंटरनेट था, ना एक दूसरे को लोगों ने बताया। अगर आज की तारीख में वो बाउट होती तो मेरे ख्याल एक महीने तक वो ट्रेंड करती रहती बाउट ही ट्विटर पे।
इससे पहले कि मुकाबला शुरू होता, अली ने जॉर्ज फोरमैन से कहा, तुम मेरे बारे में तब से सुन रहे हो जब तुम बच्चे हुआ करते थे, अब मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूँ, तुम्हारा मालिक, मुझे सलाम करो। उस समय लोगों को पता नहीं चल पाया था कि अली कह क्या रहे हैं। लोगों ने मोहम्मद अली को कुछ कहते हुए जरूर सुना था और उनके होठ जॉर्ज फोरमैन के कान से सिर्फ 12 इंच दूर थे। फोरमैन की समझ में ही नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे। उन्होंने अली के ग्लव्स से अपने ग्लव्स टकराए, मानो कह रहे हों शुरू करें। तभी अली ने अचानक अपनी दोनों कलाइयों को सीधा किया, सावधान की मुद्रा में आए, आंखें बंद की और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पहला मुक्का अली ने चलाया और उनके दाहिने हाथ का पंच फोरमैन के माथे के बीचों बीच लगा। राउंड खत्म होते होते फोरमैन अली को धकियाते हुए रिंग के रस्सों की तरफ ले गए। अली पीठ के बल रस्सों पर गिरकर फोरमैन के बलिष्ठ मुक्कों का सामना करने लगे। बगल में बैठे अली के कोच एंजेलो डंडी पूरी ताकत से चिल्लाए, गेट अवे फ्रॉम देयर।
Shifting left for right. George moves slow. Ali gets the first punch in. Looking to drop that left hook.
Zaire, Africa. That punch did no damage. That one did. Vicious hook. There's a real strong right hand just underneath the heart. And Muhammad Ali, but a straight left jab thrown by Foreman. Has Ali in the corner. Ali dances.
मुकाबला शुरू होने से पहले ही मोहम्मद अली फोरमैन पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव बना चुके थे। एक दिन पहले ही उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में डींग हाकी थी।
I'm so fast, I can run through a hurricane and don't get wet. I'm so fast, last night I cut the light off in my bedroom.
मैं इतना तेज हूं कि अगर मैं तूफान के बीच में दौड़ूं तब भी मेरे कपड़े गीले नहीं होंगे। मेरी तेजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कल रात मैंने स्विच ऑफ किया और इससे पहले कि अंधेरा होता मैं कूद कर अपने बिस्तर पर पहुंच चुका था।
लेकिन इस मुकाबले में पहले एक मिनट तक अली ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर उन्होंने फोरमैन पर शाब्दिक बाण चलाने शुरू कर दिए। अली अपनी आत्मकथा द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी में लिखते हैं,
मैंने फोरमैन से कहा, कम ऑन चैंप, अब तुम्हारा मौका है, मुझे दिखाओ तो सही क्या क्या है तुम्हारे पास। अभी तक तुम किंडरगार्टन के बच्चों पर मुक्के बरसाते आए हो। ये कहते ही मैंने एक मुक्का उसके मुंह के बीचों बीच जड़ दिया। मैंने कहा, ये लो, एक और झेलो। मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं अब तक का सबसे तेज हैवीवेट मुक्केबाज हूं। आधा राउंड खत्म हो चुका है और तुम एक भी ढंग का मुक्का मुझे मार नहीं पाए हो।
अली अपने पीछे बन्नी ब्राउन की आवाज सुन पा रहे थे, डांस चैंपियन डांस। एंजेलो डंडी भी चिल्ला रहे थे, मूव अली मूव, गेट ऑफ द रोप्स चैंप। अली लिखते हैं,
मैं अपने लोगों से कैसे कहता कि मेरा रस्सों से उठने का कोई इरादा नहीं है। राउंड खत्म होते होते मैंने उठकर जॉर्ज के सिर पर तीन सीधे जैब लगाए। मैंने ये भी सोचा कि मैं अपना शिक्षा देने का प्रोग्राम जारी रखूं, नहीं तो ये सोचने लगेगा कि इसके मुक्कों ने मेरी बोलती बंद करा दी। मैंने मुक्का चलाते हुए फोरमैन पर कटाक्ष किया, बस तुम्हारे मुक्कों में इतना ही दम है, इससे ज्यादा तेज तुम नहीं मार सकते।
जेरी आइजनबर्ग उस समय एक युवा संवाददाता थे और न्यू जर्सी स्टार लेजर ने उन्हें यह मुकाबला कवर करने के लिए किनशासा भेजा था। आइजनबर्ग ने बीबीसी को बताया,
Here we go.
When the bell rang, Ali got hit, so he immediately retreated to the ropes. This is the genesis of the world famous rope-a-dope.
जैसे ही राउंड शुरू होने की घंटी बजी, मोहम्मद अली तुरंत रस्सों की तरफ चले गए। अली की दुनिया भर में मशहूर रोप ए डोप तकनीक की शुरुआत यहीं से हुई। फोरमैन के दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी कि वो किसी भी ग्लव को अपने मुक्कों से भेद सकते हैं। मुक्केबाजी में अगर आप कोई पॉइंट मिस करते हैं तो पॉइंट जीतने से ज्यादा आपका नुकसान होता है। थोड़ी ही देर में फोरमैन की बाहों में दर्द शुरू हो गया। इस दौरान अली उनसे लगातार बातें कर रहे थे जिससे उनका गुस्सा और भड़क उठा।
दिलचस्प बात यह थी कि जब भी अली फोरमैन पर हमला करते स्ट्रेट राइट मारते। जाने माने साहित्यकार नॉर्मन मेलर भी उस समय ये भिड़ंत देख रहे थे। वो अपनी किताब द फाइट में लिखते हैं,
अली ने पिछले 7 सालों में इतने प्रभावशाली मुक्के नहीं बरसाए थे। चैंपियन आमतौर से दूसरे चैंपियनों पर दाहिने हाथ से मुक्का नहीं मारते, कम से कम शुरू के राउंड्स में तो बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक पंच होता है। मुक्केबाजी के जानकार जानते हैं कि दाहिने हाथ को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है, बाएं हाथ से कम 1 फीट ज्यादा। पिछले कई सालों में किसी ने फोरमैन के प्रति ऐसा असम्मान नहीं दिखाया था।
Backing Ali to the ropes. There's a vicious left hook to the body. Foreman setting him up against the ropes. What a vicious fast combination by Ali. Foreman looks unusually slow with his hands. Look at this now. All of a sudden he opens up. Move across the ring. A right hand lead by Foreman.
Muhammad Ali. अपनी आत्मकथा में लिखते हैं,
मैं फोरमैन को इतनी जोर से पकड़ता हूं कि मैं उसके दिल की धड़कनों तक को साफ सुन सकता हूं। उसकी सांस भी रुक रुक कर आ रही है, जो संकेत इस बात का है कि मेरे मुक्के काम कर रहे हैं। मैं उससे फुसफुसा कर कहता हूं, यू आर इन बिग ट्रबल बॉय, अपनी आंख की ओर देखो, फूल कर कुप्पा हो गई है, और अभी 8 राउंड बाकी हैं, 8 और। और देखो तुम कितने थक गए हो, मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है और तुम हांफने लगे हो। सैडलर पीछे से फोरमैन से कुछ कहना चाह रहा है, आर्चो मूर भी चिल्ला रहा है, लेकिन मुझे पता है इस समय फोरमैन सिर्फ मेरी ही सुन रहा है।
जैसे ही 8वां राउंड शुरू हुआ, अली ने नोट किया कि फोरमैन के मुक्कों की गति धीमी पड़ चुकी है। अली ने पूरी ताकत लगाकर फोरमैन के जबड़े पर स्ट्रेट राइट रसीद किया। पूरे स्टेडियम ने स्तब्ध होकर देखा कि फोरमैन स्लो मोशन में जमीन की तरफ गिर रहे हैं।
Suddenly, Ali, who had hit him a couple of times, took like two steps off the ropes, and he hit him, and he hit him again, and then he was back in the corner, and Foreman, more frustrated, now is having trouble, in my view, lifting his arms.
अचानक अली ने रस्सों से उठकर दो कदम आगे बढ़ाए और फोरमैन को बहुत तेज मुक्का मारा। फिर उन्होंने राइट और लेफ्ट हुक के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। जब अली का दूसरा राइट फोरमैन के जबड़े पर पड़ा तो हम सब ने रुकी हुई सांसों के साथ देखा कि फोरमैन धराशायी हो रहे हैं। मैंने इससे पहले किसी को स्लो मोशन में इस तरह से गिरते नहीं देखा था।
ये बॉक्सिंग इतिहास की सबसे बड़ी अपसेट थी। 25 वर्षीय और 118 किलो के जॉर्ज फोरमैन के सामने 32 साल के मोहम्मद अली को किसी ने कोई चांस नहीं दिया था, लेकिन अली ने असंभव कर दिखाया।
118 किलो का आदमी अगर किसी को चैलेंज करेगा तो वो जाहिर है कि वो बड़ी बात मानी जाएगी। और कई महीनों से वो इसकी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग कर रहे थे, और वो जो वुड कटर्स की एक वो टेक्निक होती है कि कुल्हाड़ा लेके लकड़ी काटने वाली, वो पूरे दिन भर लगे रहते थे, क्योंकि जो 118 किलो का आदमी अगर खाली तीन दफ़ा जिसे शेडो बॉक्सिंग कहते हैं अगर वो भी करेगा तो उसके शोल्डर्स में और हाथ में दर्द होगा। और उन्हें मालूम था कि क्ले छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो भी एक माने हुए खिलाड़ी हैं, उनको हराना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने लगातार वो करा और सैंड बैग्स के ऊपर पूरे दिन उन्होंने कोशिश करी। और ये माना जाता था कि अगर फोरमैन का किसी को एक राइट पड़ गया तो जैसे वो हिंदी फिल्म में डायलॉग है कि उठता नहीं उठ जाता है, वही वाली बात होनी थी बस, लेकिन वो मुकाबला दूसरा ही नतीजा निकला उसका।
इस मुकाबले के बाद मोहम्मद अली करीब 4 सालों तक विश्व हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहे, और तब तक उनकी तरह पूरी दुनिया भी ये मान चुकी थी कि मोहम्मद अली वास्तव में महानतम थे। 1983 में बॉक्सिंग से संन्यास लेने के बाद मोहम्मद अली भारत आए थे। नॉरिस प्रीतम याद करते हैं,
उस वक्त जो राजीव गांधी थे वो बड़े स्पोर्ट माइंडेड थे, और उन्होंने कुछ लोगों से कह सुन के बाहर के इनको एक विजिट के लिए बुलाया था। और जो नेशनल स्टेडियम जो दिल्ली का जो जिसको आप ध्यानचंद स्टेडियम जहाँ एस्ट्रोटर्फ है, तब ये एथलेटिक ट्रैक था और बीच में घास का मैदान था, वहाँ एक ओपन एयर स्टेज लगाया गया था जिसपे अली का एग्जीबिशन मैच होना था। कौर सिंह उस वक्त हमारे हैवी वेट चैम्पियन थे, और जब कौर सिंह के साथ उनकी बाउट हुई तो अली खाली अपना लेफ्ट हैंड कौर सिंह की तरफ सामने घुमाए जा रहे थे, जैसे स्प्रे कर रहे थे, और वो कौर सिंह मुक्के मारे जा रहा था तो उनके नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि अली का हाथ की लंबाई इतनी थी कि वो कौर सिंह वहाँ नहीं पहुंच रहा था। और वो जो रिंग साइड में लोग खड़े थे, अली जो उनके बड़े मुंह वाली बात है उनसे बातें कर रहे थे, उसमें मैं भी था वहाँ पे। बाउट के बाद जब हम लोग ऊपर चढ़े उनको देखने, तो मैंने उनकी पसली में भी थोड़ा सा उंगली मार के देखा, क्योंकि मेरे साथ ही एक बच्चा बैठा हुआ था, वो कह रहा था अंकल ये देखिए कि ये लोहे का इंसान है या सचमुच का इंसान है। तो उन्होंने ज़ोर से एक ऐसे फेंक करा मुक्का, अगर मुझे पड़ जाता तो मैं आज आपके सामने नहीं बैठा हुआ होता था। और बाद में मुझे लुईविल में केंटकी में भी मौका मिला उनका म्यूजियम देखने का, वहाँ पे इस बाउट को बहुत तरजीह दी जाती है, वहाँ पे भी लोग मानते हैं कि ये उनकी सेकंड बेस्ट बाउट मानी जाती है।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
रंबल इन द जंगल की कहानी आपने सुनी, और अब इससे पहले कि आपसे विदा लें मुख्य समाचार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। कैटालोनिया की संसद ने स्पेन से स्वतंत्र होने के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। स्पीकर कैमी फॉरकैडल ने नतीजों का ऐलान किया जो स्वतंत्रता के पक्ष में थे। इस फैसले के बाद स्पेन की सीनेट ने कैटालोनिया पर सीधा शासन लगाने का ऐलान किया है। गाजियाबाद के सीजीएम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा की ट्रांजिट रिमांड दे दी है। अब पुलिस उन्हें छत्तीसगढ़ ले जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने विनोद वर्मा को शुक्रवार तड़के उनके इंदिरापुरम स्थित घर से गिरफ्तार किया था। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे, लेकिन इस दौरान bbchindi.com का डिजिटल पन्ना आपके साथ लगातार अपडेट होता रहेगा। मोहनलाल शर्मा को फिलहाल विदा दें, नमस्कार।